قرآن پڑھانے آتا تھا اور سامنے بیٹھنے والے سوئے رہتے تھے, تب وہ کہتا تھا میں تمہیں دیکھ کے مرلی نہیں چلاتا, میں سارے وشو کے لیے مرلی چلاتا ہوں. کتنے ونڈرفل رہسیہ ہے کہ جب بھگوان اس دھرا پر آئے تو ان کو پہچاننے والے کون کون تھے. بہت پڑھے لکھے نہیں, سوکار نہیں, سب سادھارن آتمائیں, اور بابا کے سمے میں جو بھی یہاں آتے تھے سمرپت ہوتے تھے. وہ اگر آتما کا گیان دینا ہی جانتے ہیں اور رشمی کے چتر سمجھا سکتے ہیں تو بابا ان کو یہاں نہیں رہنے دیتے تھے, جاؤ. اویکت ہونے کے کچھ دن پہلے, آٹھ دس دن پہلے, دادی بامبے سے پارٹی لے کر یہاں آئی تھی. بامبے میں رہتی تھی دادی, پانچ سینٹر تھے ان دنوں بامبے میں. تو پارٹی چلی گئی, پارٹی جا رہی تھی, بابا نے دادی کو کہا بچے رک جاؤ یہیں, تو پارٹی کو بھیج دیا. دادی رک گئی, یہ بات تین چار دن پہلے بابا کے جانے سے. بابا نے دادی کو سارا یگ کئی بار گھمایا ساتھ لے کے, کیسے کیسے کام چلتا ہے. اب تو یگ کا کام بہت بڑا ہے, تب یہاں کا کام بہت چھوٹا سا تھا. مشکل سے 30-35 بھائی بہن, 25-30 ہی رہتے تھے, اور چھوٹے چھوٹے کام چلتے تھے, بہت بڑا تو کام نہیں تھا. پارٹی آتی تھی تو اگر 100 لوگ آ گئے تو منع ہو جاتا تھا, اور نہیں آؤ زیادہ ہو گئے ہیں, اس عمل میں اتنے بیٹھ سکتے ہیں. رہنے کے لیے جو جگہ تھی ان کے برانڈوں میں بھی لگ جاتی تھی چارپائیاں, اور وہاں سب سوتے تھے. یہ ٹریننگ سیکشن کا جو اوپر کا حصہ ہے کنسٹرکشن کے آگے, پہلے اس کو ٹریننگ سیکشن کہتے تھے, یہ بابا نے لاسٹ میں بنوایا تھا 68. بابا ویکت ہوئے تو ابھی یہ یوز میں نہیں آیا تھا, بن گیا تھا بس. تو ہم لوگ اس کی صفائی کیا کرتے تھے. تو یہاں پر بابا نے ٹریننگ شروع کرائی تھی, نئی کنیاؤں کی ٹریننگ ہو. پھر اسی کا روپ لیا بھٹی میں, چھوٹے چھوٹے گروپس آتے تھے, 50 کا 60 کا 70 کا بھٹیاں ہوتی تھی. اسی ہال میں بابا آ کر اوپننگ کرتے تھے بھٹی کی. بھٹی کی اوپننگ بابا, ہر ایک مرلی چلا کر ہر ایک کو ٹولی دیتے تھے, کیونکہ تلک بھی لگاتے تھے. مجھے ایک سین یاد رہتا ہے, آپ کو سنا دیتا ہوں, جس سے میں وشیش روپ سے بہت آنندت ہوا تھا. ان دن رات کو 2-2 گھنٹے پہرے کی ڈیوٹی بھی سب کی ہوتی تھی سیکورٹی میں, ہم سب کی جو بھی تھے, تو 2 گھنٹے ہماری بھی تھی, 11 سے 1, 11 سے 1, 1 سے 3 ایسی ہوتی تھی. تو بابا یہاں آئے ہوئے, 20 ٹیچرس کی پہلی بھرتی ہوئی جگ میں, 20 کے, جس میں جینتی بہن جو ابھی لندن میں ہیں, سدیش بہن اور بہت ساری ایسی بہنیں سبھی ہیں, الگ الگ بڑے بڑے استھانوں پر ہیں. تو کیا ہوا, بابا یہاں آئے, اویت بابا نے ایک ایک کو بات کی. یہاں وہ لگایا ایک چنڈی کہتے تھے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں جس میں آگے لٹک جاتا ہے, لٹو تھا چاندی کا, مجھے پتا نہیں, یہاں لٹک جاتا ہے چین, چین اور وہ گول لٹو سا یہاں, اور وہاں یہ چنڈی میں چنڈی کہتے تھے اس کو. اور بابا نے یہاں بیٹھ کر ایک ایک سے بات کی, یہ لگایا, تلک دیا, گود لیا, اور ہم تھے دیکھنے والے. جگدیش بھائی بیٹھے تھے, جگدیش بھائی نے کہا جب 20 کے پورے ہو گئے نا, 20 کو کم سے کم 1 گھنٹہ لگایا, 1.25 گھنٹے, بولی تھوڑی سی چلتی تھی آدھا گھنٹہ, پھر 1.5 گھنٹہ لگایا بابا نے. تو دیکھنے والے بہت آنندت ہو رہے تھے. تو جگدیش بھائی نے بابا کو کہا, وہ بہت کھلے ہوئے تھے, ہم لوگ تو کھلے ہوئے نہیں تھے بابا سے. تو بابا کو کیا کہا, بابا پانڈووں کو بڑی ایسا ہو رہی ہے, سوچ رہے ہم بھی کماری ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو بابا نے بہت مسکرا کے اتر دیا کہ وطن میں جتنا چاہے ملن بنا سکتے ہو. تو میں نے جو 2 گھنٹے وہ سین دیکھا تھا نا, اس کا نشہ بہت چڑھ گیا, کیونکہ मैं देखता ही नहीं था। जब 69 बिल्कुल शुरू की है मास्क होगा तो मैं देखता ही नहीं था। मैं बहुत अच्छा योग करता था बाबा के सामने बैठ के, ऐसा नशा चढ़ा कि 11 से 1 का जो मेरा योग था वो मोस्ट पावरफुल हो गया उन दिनों का। ऐसा मोस्ट पावरफुल योग 2 घंटे पहली बार हुआ, 69 मार्च की बात है या फरवरी। तो ऐसे सीन यहाँ बहुत लगते थे, बाबा बिल्कुल यहाँ बैठता था और सब आगे आगे बिल्कुल यही थोड़े से होते थे। तो दादी को बाबा ने भाई एक पंखा तो चला दो, मैंने ये पहन लिया थोड़ी गर्मी लग रही है, एक पंखा। उधर हमारे वहाँ जनसभा में बरसात ही नहीं, तो मैं छतरी सोचा ले लूँ वहाँ की नहीं, लेकिन जरूरत पड़ जाए बरसात के दिन है। मैं अपने कमरे से गाड़ी तक ऐसे ही आया, कोई कोई बूंद आती थी धीरे धीरे, बस रास्ते से बरसात तेज हुई, गाड़ी भी ढीली हो गई, मुझे आने में 15 मिनट लगे, दिखे भी कुछ नहीं। मैं सोचा पता नहीं क्लास होगी या नहीं हुई। तो दादी को इस तरह बाबा ने सब चक्कर लगाया और बाबा उस दिन 18 जनवरी को सवेरे क्लास में नहीं आए थे, बाबा की तबीयत ढीली थी। ये यज्ञ के इतिहास में पहली बार था जब बाबा मुरली चलाने नहीं आए। तो भाइयों ने बाबा को पूछा कि बाबा, डॉक्टर को बुलाए, बाबा को छाती में इधर थोड़ा दर्द था एक दिन पहले से, तो बाबा से पूछा कि बाबा डॉक्टर को बुलाए, बहुत नशे की बात है, आप देखो ब्रह्मा जो संसार की सबसे महान आत्मा है उसका इस धरा पर आखिरी दिन, उसके बाद तो उसे ऊपर से काम करना था, उन्हें भी नहीं पता था कि मुझे इतना लंबा समय ऊपर से काम करना है क्या। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, उस उत्तर से आप समझेंगे बाबा की स्थिति। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, डॉक्टर क्या करेगा आकर, नहीं बुलाया, बिल्कुल नशा एकदम। आप सोचो संपूर्णता का आखिरी दिन धरा पर, सबसे महान आत्मा जिसके ऊपर यही संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो बाबा यहाँ शाम को फिर मुरली सुनाने हैं। बाबा ने कहा कि आज बच्चों से सवेरे नहीं मिले हैं तो जल्दी घंटी की बजती थी, पहले किचन के पास घंटी होती थी, भोजन के लिए वही बजती थी और क्लास के लिए भी। तो कहा 8:15 ही सबको बुला लो। तो 8:15 से 5 मिनट पहले घंटी बज गई, सब लोग क्लास में आ गए। 8:15 से 9 के थोड़ा सा पहले तक बाबा ने मुरली चलाई और यहाँ चलाई, और आपने सुनी है मुरलिया, सुनिए ना, बहुत अच्छे अच्छे महावाद थे लास्ट के, जिसमें वो तीन धारणाएं भी थी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो, सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा यहाँ से उठ के दरवाजे पे खड़े हुए और सबको देखा और कहा अच्छा बच्चों से विदाई। ऐसा बाबा कभी बोलते नहीं थे, कि ध्यान में नहीं दिया बाबा क्या बोल रहे हैं। और बाबा रूम में गए, अपनी चारपाई पे बैठे, जब ये डेली थी सबको पता था, तो दो चार बाबा के साथ गए, दादी भी आ गई कभी, और बस बाबा बैठे, बाबा ने दादी का हाथ लिया ऐसे और दृष्टि देने लगे और गए, हाथ ढीला होके छूट गया। तब इनको लगा कुछ हुआ है, क्योंकि किसी ने मृत्यु इस तरह देखी नहीं थी, जैसे सामने मामा गई थी तब तो यहाँ कोई होते नहीं थे, बाद में सब आए थे। तो उस टाइम दादी को ऐसा आभास हुआ कि बाबा ने अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी है। ये अनुभव दादी हर 18 जनवरी को सुनाया करती थी, सालों साल सुनाया हुआ यही अनुभव। हाँ बाबा, बस बाबा का शरीर ढीला हुआ, हाथ छूटा और उनको लगा कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा देखो भी क्या हुआ है, भोली दादी होती थी वो आ गई, ये वो सब देख रहे, डॉक्टर को बुलाया फटाफट, नाड़ी नहीं चल रही है, गए बाबा। दादी उसी टाइम से फोन करना प्रारंभ किया जनसों में, फोन उन दिनों करना सहज काम नहीं होता था, सहज काम नहीं, जहाँ जहाँ फोन गया तंकाल बुक करना पड़ता था, वो यहाँ से अब रोड से दिल्ली या बॉम्बे, वहाँ से आगे एक जगह का दिक्कत हो गया तो गया, फिर दोबारा करो उसमें फिर आधा घंटा। तो दिल्ली में जो मेन सेंटर था, राजौरी गार्डन था, उन दिनों मेन सेंटर, वहाँ फोन गया, किसी को विश्वास न हो, जगदीश भाई को गया, किसी को विश्वास न हो, रमेश भाई बॉम्बे से चल के आ गए थे, सवेरे वो पहुंच रहे थे यहाँ, तो पैदल ही आते थे ना यहाँ से बस स्टैंड से, तो उनको रास्ते में ही मैसेज दिया कि नहीं तुम्हारा दादा तो गया भाई, उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, दादा गया कैसे बोल रहे हैं, उनके बाबू के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो दादी को बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और बाबा ने अव्यक्त बाबा ने फिर ये बात उंगलियों में भी स्पष्ट कर दी बच्चों की ताजपोशी की। बाबा का शरीर यही रखा था और ये अंतिम नहीं था, ये आनंद था, ऐसे ही थोड़ा ऊंचा नीचा, यही बाबा का संस्कार किया गया था और यही फिर शांति स्तंभ बनने का निश्चित हुआ यादगार में। पहले सबका विचार था कि बाबा का स्टैचू बनाया जाए, ये बात किसी को नहीं पता होगी, बाबा का स्टैचू बनाया जाए मार्बल का। शिव बाबा से पूछा गया तो शिव बाबा ने नो, धरती का रूप है ना वो, नहीं, तो वो नहीं बना। फिर ऐसा बना, दादी को यहाँ से और बाबा के रूम तक ले जाया गया सब बहनों के साथ सिर पर कलश रखकर। दादी अब से जिम्मेदार रहेगी, बाबा है और बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया कि दीदी दादी दोनों निमित्त रहेगी, यह कैसे ही चलता रहेगा, सबको था कि क्या होगा, ये कैसे ही चलता रहेगा, जो मुरली चलाई है वो रिपीट होंगी, रोज उनको सुना जाएगा, यहाँ से सबको डायरेक्शन मिलती रहेगी। तो एकदम शांत हो गया सबका मन कि यज्ञ वैसे ही चलेगा, क्लासेज वैसे ही चलती रहेंगी, ब्राह्मणों की पालना वैसी होती रहेगी, बाप दादा आते रहेंगे। दो को नियुक्त कर दिया, गुलजार दादी और संतरी दादी, ये दो बाबा के रथ होंगे, इनमें बाबा आया करेंगे, औरों में नहीं। तो संतरी दादी में भी आते थे लेकिन उनकी तबीयत यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार सही होती थी, सूट नहीं करता था, तो फिर कलकत्ते चली गई गुलजार दादी में, उसके बाद से आते थे। दादी ने काम संभाला और सबसे पहला अट्रैक्शन जो हम सबको हुआ, दादी की मुरली सुनाना। ऐसा था कि जैसे बाबा अपना सारा वरदान उनके सिर पे रख गया हो, कि उनसे ही सबको बाबा की वासना आएगी। मुरली सुनाना यही सुनते थे, ये सब माइक होते नहीं थे उन दिनों। माइक की कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, आप देखिए ये कभी नहीं सुनी है, माइक की भी कहानी है। बाबा यहाँ बीच में ऐसी गद्दी होती थी, उसमें बैठ के मुरली चलाते थे, इधर वो रखा जाता था, इतना बड़ा होता था ना हाथ जैसा, लाइन की पड़ी हुई वो यहाँ रख दिया जाता था, इसलिए यहाँ बाबा बोलते थे, वहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग की सीन खुले टेप रिकॉर्ड था, तो सामने न होने से आवाज क्लियर नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। बाबा अव्यक्त हुए तो वही माइक, वही माइक्रोफोन अब हंसी की बात सुनाते हैं। बाबा बोलते थे तो बाबा की आवाज तो थी नहीं, पीछे सुनेगी नहीं, तो लच्छू बहन जो थी ना, जानते है ना, वो उस माइक को हाथ में ऐसे लेके बाबा के आगे रखती थी, यहाँ खड़ी हो गई हाथ में बाबा बोल रहे हैं। और देखो भगवान को भी कैसे कैसे काम चलाना पड़ा, वो चाहता तो माइक को भी बरसात करा सकता था यहाँ, लेकिन नहीं, सिस्टम है जो ये संसार की रचना के विधि विधान है, इस तरह इसको वर्तिक पानी है, उसी पर है, बाबा उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो बाबा फिर कह देते तो बच्ची थक गई होगी रख लो। फिर किसी ने एक स्टैंड दिया, अब माइक हो और स्टैंड, ये तो कपड़े से माइक को बांध दिया गया, रबड़ बैंड भी नहीं होती, तीन दिनों रबड़ बैंड का जमाना नहीं था। फिर मुरली चलने लगी, फिर किसी ने एक पैसा दिया, तब से शुरू हुआ। वो ये तो बहुत रिफाइन है, सुंदर है, वो सिंपल होती थी, उन दिनों 10-20 रुपए का ही आता होगा। ये माइक की कहानी, भगवान को भी कैसे कैसे माइकों से काम चलाना पड़ा। तो दादी ने वो तो बिना माइक के ही मुरली होती थी ना, दादी बहुत रस भरती थी मुरली में, वो हमने देखा सब। हमारा दादी से विशेष कनेक्शन रहा। थोड़े दिन के बाद हम किचन में आ गए तो दादी का रूम ना किचन का इधर वाला ही था, जो ये रूम बना हुआ ना, अब क्या क्या वहाँ है मुझे याद नहीं। रवि का रूम है पहला, ये लाइन इधर रिजर्वेशन है ना, इधर वाला ये पूरी लाइन, ये एक ऑफिस था, फिर एक बड़ा हॉल था जिसमें 8 लोग रहते थे, उसमें दादी रहती थी 8 के बीच में, देखो आप 8 के बीच में दादी रहती थी। वहीं से अगला किचन था, तो दरवाजा निकला, دوسرا دروازہ کچن کا. دادی روز پانچ بار کم سے کم کچن میں آتی تھی. ہم کچن میں آ گئے, ہم کو وہ جاتا نہیں تھا کچن کا کام, تو ہمیں سکھاتی تھی. کچھ غلطی ہو جاتی تھی نا, کبھی کوئی چیز جل آتی کبھی کچی رہ گئی, کبھی مال مسالے جاتا کبھی کھانا, تو سکھاتی تھی ایسے ایسے کر. بہت پیار سے ہم نے پہلی چیز سیکھی کہ وہ ڈانٹ کے نہیں سکھاتی ہے کہ تم نے کیا کیا. بہت پیار سے, بہت پیار سے سکھاتی ہے. تو بہت دھیرے دھیرے ہم ان سے کھلتے ہیں, سلیپتا ہوتی گئی. بہت اچھا لگنے لگا. دادی آتی تھی, پوچھتی رہتی تھی, دیکھتی تھی ہمیں, ہاں ہم اپنے پوشاک میں کیسے رہتی ہیں, سب کچھ اچھا ہوتا گیا. یہاں پر یہ میں ایک سسٹم تھا, چھوٹی سی بات سناؤ دادی, بہت خوش ہوئی اس چیز سے. ہم سے بات پرسنل ہے, پر یہ بات 69 کی یا 70 کی ہے. تو جو بھی پارٹی آتی تھی ان کو اپنا بھوجن اور ٹولی جانے کے لیے خود بنانی ہوتی تھی. 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 آ جاتے تھے, اپنا بھوجن بنائیں گے جانے کا اور اپنی ٹولی بنائیں گے جو ان کو لے جانی ہے. تو بہت بھیڑ, چھوٹا سا کچن, بھیڑ ہی بھیڑ. تو میں نے وہی لادی کو کہا کہ ان سب کا بھوجن میں بنا دیا کروں, میں تو اکیلا ہی بنا دیتا. تو مجھے یاد ہے 50 لوگ جا رہے تھے, کوئی بچی تھی چھوٹی سی. میں نے ان سب کا دو سبزی پکوڑا اور ایک کوئی اور چیز تھی چاروں بنا کے, اور میں اسے رکھ کے 6:15 بجے سے کلاس شروع ہوتی تھی ابھی نا, 6:15 بجے کلاس میں پہنچ گیا. اب دادی دیدی چکر لگانے آئی, وہی سب لوگ جا رہے ہیں, کھانا پینا کیسے بن رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کیا پارٹیاں کوئی نہیں کھانا بنا رہی, کیا بات ہے, اور شانتی ہے وہاں تو کوئی ہے نہیں. تو وہی لائٹ نے بتایا کہ میں سب کا بھوجن بنا کے چلا گیا ہوں. تو دیکھا انہوں نے ایک ایک چیز کھول دیا, ارے اچھا سب کا بن گیا, پکوڑے بن گئے, پلاؤ بھی بنا اور دو سبزی بن گئی, بن گیا. بڑی خوش ہوئی. تو میرے کو بولا بڑا پیار کیا, بڑی مہیما کی ایک دم سے. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ پیار ملتا ہے کیا. میں تو سوچا یہاں بہت بھیڑ رہتی ہے, یہ بےچارے مرلی مسٹر کے یہاں کچن میں آتے ہیں, ان سب کو بول لادی کو دینا پڑتا ہے. بول رہے جیرا کہاں ہے, لو ہاں چینی کہاں رکھی ہے, لو بھائی ایک کڑھائی لا دو, لو جی وہ کام سب میں نے کر دیا. تو شانتی ہو گئی. تو یہ اس طرح دھیرے دھیرے وقتی کو پایا سادھارن آتماؤں کے دوارا. دادی اس کو بہت اچھی طرح سنبھالا. دادی کی بہت بڑی چیز تھی, اور بھی آ گئے بھائی, تھوڑا تھوڑا اور آگے ہونا ہو جائے ماتا ادھر, ہاں آگے آ جاؤ جو کھڑے ہے تو آگے آ جاؤ ماتا ادھر. تو دادی کے تین گنوں کی چرچا بابا بہت کرتے تھے. ایک بات میں آج کچھ وہ بات سناتا ہوں آپ کو جو کوئی نہیں سناتا اور جو کسی نے سنی بھی نہیں ہوگی. میں سنا تھا نا بات, تو آپ سنتے رہتے بڑی بڑی باتیں کو, اچھے چھوٹی باتیں سناتے. تو بات تب یہ کی ہے, دو چار سال بعد کی, دیدی کہیں سینٹ ہو گئی, گئی دادی یہاں گئی اور مدھونی واسی. تو پتا نہیں دادی نے کہا ہوگا, پروگرام بنا, گلزار دادی یہاں تھی, بابا آئیں گے. بابا کہاں آئے, بابا بھن بھن جگہ پر آئے, یہاں اسٹیج پر بھی آئے, تو ادھر نیچے گدی لگا دی, وہاں بھی آئے, اور اس دن آئے بابا جہاں لٹریچر ہے نا گیٹ کے پاس, اس کے اوپر کمرہ, اس میں بابا آئے. اور ہم مدھوبنی واسی اور دادی. تو بابا نے آپ ہی کیا کہا دادی کو, کہ آپ کے پیار کا اسپیشل ریٹرن دینے آئے ہیں. دادی کے لیے آئے تھے, سوری ہم سب تو کھا رہے تھے بیچ میں مال بانی, بس دادی کے لیے آئے تھے. بہت اچھی ریلنگس رہی کہ جیسے بابا دادی کو بہت سمان دیتے تھے, بہت زیادہ سمان, تو وہ اس مرلی سے جھلک رہا تھا بہت زیادہ. ایسی ایسی چیزیں بہت ہوتی رہی. بابا بہت اپنے کمرے میں آتے تھے بہت بار, ہم لوگوں کو موقع مل جاتا تھا. میں بتاؤں آپ کو, 76 کا ایئر تھا, مائک چل رہا 76, وناش کا کال, وناش کا کال 76. بابا کمرے میں آئے تھے, ہم لوگ بھی بیٹھے تھے. تو مجھے نا جب دادیاں ملتی تھی نا بابا سے, مجھے دھیان سے سنتا تھا کہ بابا کیا کہے گا, ہی نہیں दीदी से, दीदी जब मिलती थी, दीदी का क्या था, उनको ब्लड प्रेशर था तो वो देर तक नहीं जाती थी, बाबा तो 11:30 रहते थे ना, तो दीदी बाबा से छुट्टी लेके मम्मी चली और दीदी मिलेगी छुट्टी ली और फिर वो जाएगी अपना 10 बजे तक सो जाएगी। पहले ऐसा ऑफिशियल नहीं था कि हर बार बाबा को भोग खिलाएंगे, बाबा जब आते थे ऐसा कुछ नहीं, सीजन के एंड में बाबा को भोग खिलाया जाता था एक बार केवल, और उसमें भोग खिलाने वाले हम भी होते थे, दो हम भाई, भोली दादी, दीदी दादी, 5 लोग। तो हमने बहुत बार बाबा को यहाँ बाबा के कमरे में भोजन खिलाया। तो दादी ने बाबा से बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया, 2 प्रश्न मैं सुनाऊंगा, 2 बार पूछे थे वो। बाबा ने कहा, दादी ने कहा कि बाबा 76 का वर्ष समाप्त हो रहा है, नाश आ गया है, आपने अष्टरत्नों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछा कि विनाश का समय आ गया है, हमें कर्मातीत होना है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है। तो कर्मातीत का बाबा ने उत्तर दिया, जब आत्मा कर्म के प्रभाव से परे और कर्म के परिणाम के प्रभाव से परे हो जाती है वो कर्मातीत अवस्था है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। कर्म का इफेक्ट हर मनुष्य पर आता रहता है, हम कर्म में बिजी होते हैं, सब भूल जाते हैं। कर्म का जो परिणाम आएगा उसका इफेक्ट बहुत आता है, हमारे फेवर में आ गया परिणाम तो बहुत खुश, थोड़ा सा उल्टा सुलटा आ गया तो हम परेशान, उसका इफेक्ट बहुत आता है, दोनों के इफेक्ट से बने। ठीक है, ये बहुत गहरी बात हो गई। फिर अश्रद्धों के बारे में बाबा ने उत्तर दिया, वो बहुत जबरदस्त उत्तर है, मैंने कहेंगे लिखा भी है वो, जो तुम्हारी नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, जो बाप की नजरों में है वो तुम्हारी नजरों में नहीं। मतलब आगे कुछ भेद नहीं खोला, इतना कह के पूरा कर दिया है। समझ गए महाराज, यानी अश्रद्धा ऐसे है ना गुप्त है, जिनको आत्मा ही नहीं जान सकती, यहाँ पुलिस नहीं दे सकती है, यही है, बाबा जानता है, उसकी नजरों में कोई और है ना। एक और अच्छा अनुभव सुना तो इसी संबंध में, एक बार बहुत सारी टीचर्स बहनों की बट्टी हुई यहाँ, सब ओम शांति वन बन चुका था, तो बाबा को भोग लगाया गया गुलजार दादी के द्वारा। तो बाबा ने उन्हें 108 रतन दिखाए और वो 108 रतन 3 लाइनों में खड़े हैं, चंद्र अर्ध चंद्रमा की शेप में 3 लाइन आगे दूसरी तीसरी, और गुलजार दादी उन्हें ध्यान से देखने लगी, कोई चीज ऐसी आती है हम जो देखता है ना, मतलब ध्यान से देखने, देखती रही देखती रही। बाबा ने कहा, पूछा, बच्ची क्या देख रही हो, तो कहा इनकी भाषा ऐसी हुई कि बाबा वो तो इसमें है ही नहीं, और बाबा ने भी उत्तर यही दिया, वो इसमें नहीं है। ये उन्होंने सुनाया, समझे ना राज, विजय रतन बहुत महान आत्मा है सृष्टि की, वो ऐसा नहीं कि कोई बड़ी पोस्ट पर है तो वो विजयी होगा, इसमें पोस्ट की बात नहीं, संपूर्ण प्योरिटी, बहुत सुंदर योग, निरंकारिता, सरलता, ये सब चीजें चाहिए उसमें। एक और बात सुना दो, एक बार ओम शांति वन बन चुका था, एक शीलिंद्रा दादी होती थी यहाँ, बॉम्बे की दादी थी वो पुरानी, अब वो नहीं है, बहुत साल पहले से भी छोड़ा, उनके घर में नारायण को बुलाया, ये यज्ञ के शुरू में जो सीन चलते थे उस रूप में नारायण आए, हम सब देख रहे हैं नारायण की रॉयल्टी, सजा दिया गया था उनको उसी दिनों, उन्हीं दिनों जन्माष्टमी का दिन था, तो गुलजार दादी को बाबा ने अश्रतन दिखा दिए ऊपर, लेकिन चेहरे गुम, चेहरे नहीं दिखाए, चेहरे जैसे बता जैसे प्लेन है, पराठ खड़े हैं। देख लिए उन्होंने, बाबा से तो कुछ ज्यादा पूछ नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम वही जन्माष्टमी, बाबा ने गुलजार दादी को अश्वतन दिखा दिए चेहरों सहित, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। आ गई नीचे वो भोग लगा के और उसने बता दिया कि बाबा ने आज मुझे अष्टलोचन चेहरों से दिखा दिए। अब दादी और जानकी दादी भी आई हुई थी लंदन से, इन्होंने बहुत जोर लगा के बता दो पता पता दे दो आई थोड़ा सा अंदाज। नहीं नहीं बाबा जी मना है, वो देखो इतनी पक्की गुजरात दादी कोई भेद नहीं होना। एक ऐसी चीजें है जो हम सब देखते रहे, इनका आनंद लेते रहे। तो दादी ने यज्ञ को बहुत सफलता पूर्वक चलाया। देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति के दोष निकाल देना, उनके कार्यों में कमी निकाल देना, ये तो कॉमन बात है। जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, जो दौड़ेगा वो गिरेगा भी जरूर ना, जो घर बैठा हो क्यों गिरेगा, जो तेज चलेगा उसके मार्ग में बाधाएं भी आएंगी। तो कार्य करता है कोई भी, और इस महान यज्ञ की चीफ बना दिया गया उनको। तो मैं सदैव देखता था कि दो पद है उनके पास, एक वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य है चीफ, प्रशासन उनके हाथ में, दूसरा वो इस ब्राह्मण परिवार की हेड है, दादी समझ लो जैसे माँ दादी। तो परिवार में राज नहीं चलता, और संस्था में राज चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का सुंदर बैलेंस रखना, ये सही काम नहीं होता। ये काम वही आत्मा कर सकती है जो ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो, जो बहुत निरंकारी हो, जिसमें समानता का भाव हो, भेदभाव न हो, जो निस्वार्थ हो, जिसको अपने मान की कोई इच्छा न हो, देना ही देना हो, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज उनमें बहुत आ गई थी, सबको संतुष्ट करना लक्ष्य रहता था। हम देखते थे यहाँ लिस्ट दी जाती है कपड़ों की हमारे यहाँ यज्ञ में एक बार साल में, तो यज्ञ में जब कपड़े दिए जाते कोई संतुष्ट होता था कोई नहीं, ये बात बड़ी नेचुरल सी है। दादी कोशिश करती थी सबको संतुष्ट करे, वो भी कहानी सुना दो जब बाबा के साकार में, तो हम लोगों को देखो कैसे कपड़े मिलते थे, दो ड्रेस नहीं चार पुरानी, पुरानी समझिए सेकेंड हैंड, गरम कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं, जुराब बहुत मुश्किल से, ठंडिया जबरदस्त, यहाँ की बारिश बहुत तूफानी थी, इसलिए यहाँ की स्कूलों की छुट्टी बरसात में होती थी, तूफानी बरसात, फिर शायद सर्दी में रखने लगे तो बहुत सर्दी, जैसे पिछले साल यहाँ -9 तक पहुँचा टेम्परेचर, -9, हम तो नीचे थे हमें पता नहीं चला, जब हम ऊपर आए तो -5 था, -9 तक पहुंचा, ऐसी ठंड और सिंपल यज्ञ, बहुत साधारण था यज्ञ में, लेकिन दादी का लक्ष्य होता था सबको संतुष्ट करें, कोई भी नाराज न हो जाए, छोटी मोटी बात से कोई यज्ञ में उदास न रहे। जैसे घर में कोई बड़ा होता है और उसके बच्चे छोटी मोटी बात में परेशान हो तो बड़े को कैसा लगता है, बहुत ध्यान रखती थी, केयरिंग नेचर, केयरिंग संभाल करने वाली। एक दूसरी बात याद आ गई मुझे, हम सब कुमार थे, 25 कुमार सब हो गए थे, ऊपर की बिल्डिंग बनी थी लाइट हाउस कहते थे, 5 कमरे पहले वो भी नहीं होते थे, तो हम सबको एक एक रूम में 5-5 को रख दिया। तो कुमारों की क्या आदत होती है, बहनों की नहीं कुमारों की, कुमार जानते हैं, सवेरे उठे कम्बल ओढ़ा हुआ है, फिर तो या दोपहर को तो फिर सोना है, तय क्या करनी है, छोड़ के चले आए, कुमारों की आदत होती, सफाई का ध्यान काम, कपड़े उतारे पड़े हैं कहीं भी, हाथ पे पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, तो दादी ना हमारे कमरों में चक्कर लगाती थी, और जब सब काम पर है तब चल जाती थी चुपचाप, नीचे आवाज होती थी दादी गई दादी गई दादी गई कमरों में, सब देख के आती थी, तो डांटती नहीं थी, सिखाया सबको कि ऐसे कम्बल तह करके ऐसे रखो, जब सो के उठो तो चारपाई को ऐसे सजा के वापिस नीचे आओ, ऐसे ही नहीं छोड़ो, धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा। सामान रखने की भी कहीं जगह नहीं होती थी, 5 लोग रहे उस छोटे कमरे में, तो बस एक फूटी बीच में जगह बचती थी निकलने की, तो फिर ऐसी खाटे बना दी गई कि बॉक्स वाली छोटी सी, आजकल जैसे बॉक्स नहीं रॉयल सिंपल से, उसके नीचे सामान रखने लगे, पहले यज्ञ में इतनी साधारणता से गुजरते हुए दादी ने सबको संतुष्ट रखने का बहुत ध्यान दिया। बीमार हो जाते थे सब कुमारों को कहती थी सब एक दूसरे के फ्रेंड बनो, किसी की तबीयत खराब है वो अकेला ना हो जाए, उसे खाना पहुंचा। फ्रूट तो यज्ञ में होते ही नहीं थे, दवाई भी नहीं होती थी, उसे खाना देना, चाय देना, कुछ और आवश्यकता, तो कहते थे कमरे वाले सब एक दूसरे के फ्रेंड, और भी सब एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। सिखाया हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं आता था, सब कुमार घर से पल के आते ना, खाना खाया गिलास फेंका, माँ उठाएगी ना, बिस्तर छोड़ दिया माँ करेगी ना ठीक, तो ये माँ की आदत थी ना, तो सब ऐसे ही चलते थे। तो सिखाया एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, बहुत अच्छी चीज। हम देखते थे कि दादी सिखाती है। मुझे याद है एक बार मैं और राम श्लोक हम कल्चरल प्रोग्राम करते थे, 10 साल हमने किया 74 से 84 तक, तो मैं और राम श्लोक वो मेरे कमरे में आया हुआ और खाट पे बैठ के हम कुछ लिख रहे हैं डायलॉग जो आज करना था हमको, तो उस डायलॉग में हम हंस रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ ये बोलेंगे ये बोलेंगे, और दादी यीशु बहन के साथ हमारे कमरे के बाहर ओट में खड़ी है और सुन रही है सब, और हम अपने में ऐसे मस्त हैं जब इधर उधर नहीं देख रहे, हमें लिखना है। उसी दिन लिखते थे, उसी दिन तैयार करते थे, उसी दिन गाते थे, किचन का काम भी था, ऐसा होते हुए भी करते थे। तो फिर दादी सामने आ गई, अरे हम तो देखने लगे दादी खड़ी है, हाँ सब सुन रही थी, बहुत बहुत प्यार तो इतना था कि वो डांसने वाले में नहीं की क्या आवाज कर रही तुम जोर जोर से बोल, ये सब नहीं सब सुन रही थी, अच्छा बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा प्यार करके वो महिमा करके आ गई। तो कभी कभी दादी रात को चल जाती थी, हम सोए हुए हैं, सोए हुए हैं तो जो नहीं सोए ना वो चादर उठा जो गोल के लिए सोए हुए, दादी 10:30 बजे गई है सो रहे इनको उठाना नहीं, हाँ चुप चुप बिल्कुल आवाज में करना है घर जाएंगे, बिल्कुल माँ की तरह ऐसी केयरिंग नेचर, बहुत स्वीटनेस, एक परिवार की सबको भावना देना, पार्टी आती थी लक्ष्य रहता था सबसे मिलूं, सबकी बात सुनूं। जब यह छोटा था दादी इतना ध्यान देती थी कि कोई दादी से बात करना चाहता है करो, ये नहीं भाई दादी के पास टाइम नहीं, करो। दादी अपने सब साथियों को छोड़ के चुपचाप अकेले घूमने लगती थी, किसी को बात करना कर सके, साथी करने में देते थे ना, तो आप जानते ना, चुपचाप अकेली घूम लेती थी। मैं प्राइवेट बात बता रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। नीचे भी गए, दादी की तबीयत खराब थी, तो मेरे को क्या काम था, दादी ने कहा हुआ था मुरली के बाद तुरंत पहली मीटिंग मेरी होती थी दादी से किचन के लिए, कुछ भी हो ये वो बता देना, तो मैं मुरली के बाद 8:15 बजे दादी के पास जाता था। तो वो नीचे वाले दादी को कहते थे चलो अंदर चलो अंदर, और दादी देखती थी बहुत सारी माताएं प्यासी नजरों से मेरी ओर देख रही है। दादी ये देख लिया, कहे मम्मी तो कुर्सी लाओ यहाँ बाहर, दादी बाहर धूप में बैठेगी, दादी को धूप नहीं चाहिए क्या, पर मैं समझ रहा दादी का मतलब। दादी ने दो कुर्सी रख दी, एक से मुझे बैठा दिया, एक से खुद बैठ गई, और मुन्नी बहन अपना कुर्सी दे के वो चली गई कि दादी धूप बैठेगी, मैं अपना काम कर माता हूँ, आओ आओ आओ, कम से कम 500 खड़ी माता है, वो सब आ गए। हाँ दादी बड़े कुछ फोटो निकाल गए, हाँ खड़े हो जाओ यहाँ निकालो भाई फोटो, ये पीछे की बात है अभी दादी के शरीर छोड़ने से 2-3 साल पहले ये सब चलता था। तो बहुत स्नेह देना, अपनापन देना, दादी को लगता था मैं इस परिवार की बड़ी हूँ, ये सब मिलने आते हैं मेरे से, मैं अंदर छुप जाऊँ, दादी को भारी लगता था। बीमार होते भी मुरली सुनाने आ जाती थी, सुनाई नहीं जाती थी उनसे, मेमोरी वीक हो चुकी थी, लेकिन आ जाती थी कि मेरे परिवार के सब भाई बहन हमारे पास आए और मैं उनसे न मिलूं, ये अच्छा नहीं है। तो देखो बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदार, सबको हमेशा संतुष्ट करने की बहुत श्रेष्ठ कामना, सब संतुष्ट होकर यज्ञ से जाए, किसी को कोई शिकायत न रहे, बहुत अच्छी पालना दादी देती थी। कुमारों की भर्ती हुई यहाँ वैकेशन हॉल था, तब कुमार आए होंगे 150-200, सब ने प्रश्न पूछे, अनेक प्रश्न पूछे, माँ के हाथ का भोजन खाएं, सुनी होगी बात बहुतों ने, दादी ने सभा में एक नियम दे दिया सबको कि माँ के हाथ का भोजन खाना है। कठिनाई थी उनके मन में, दुविधा थी, माँ के हाथ का भोजन नहीं खाते तो माँ पर मोह के कारण गहरा बुरा प्रभाव, गहरा डीप एकदम डिप्रेशन जैसा, खाते हैं तो उन्हें लगता है ये कोई तो भोजन नहीं है। तो दादी से प्रश्न पूछा गया, दादी ने सभी कुमारों को छुट्टी दी, घर में रहते हो अलग रहते हो तो अपना बनाना, घर में रहते हो तो माँ के हाथ का खाना है आपको, कैसे खाना वो योग आदि करके। सबने पूछा कि हमारी इतनी सैलरी है हम उसे कैसे बांटे, कभी भी नीचे युवकों ने प्रश्न पूछा था, हम लोग उत्तर देने वाले थे तीन, तो सबने ये प्रश्न पूछा था हमें वही सैलरी मिलती है उसको हम कैसे कैसे बांटे, परिवार को भी देना है, बैंक में भी रखना है, अपने लिए भी खर्च करना है, यज्ञ में भी लगाना है। तो बहुत अच्छा सिस्टम दादी ने उस क्लास में सब कुछ सुना दिया था कि इस तरह से आप अपने पैसे का यूज करो। कोई कहते थे हमारे माँ बाप ज्ञान में नहीं है क्यों नहीं उन्हें, दादी ने कहा नहीं देना है, कर्ज है उनका तुम पर। एक बहुत रिलैक्सिंग एडवाइस, एक ऐसी सलाह जिसमें सबके मन तृप्त हो गए। अब कोई कुमार सोच रहा है मेरे माँ बाप ने फादर ने गरीबी से पैसा कमा कर अपनी बचत करके मुझे पढ़ाया है, अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको मदद करूं। और अगर उसको डायरेक्शन मिल जाती है नहीं देना है तो समझते ना क्या होगा। तो सबको रिलैक्स कर दिया कि नहीं तुम्हें देना है। तो ऐसी बहुत अच्छी सुंदर चीजें जिससे सबको बहुत आनंद आया, बहुत रिलैक्स हुए। दादी ने क्लासेज में सबको दी बहुत अच्छी। दादी की एक सुंदर बात और सुना देता हूँ जो भी आपने नहीं सुनी होगी। यज्ञ में सन्यासी वादियों की सेवा करने का किसी में उमंग नहीं था, क्योंकि एक बार सन्यासी बुलाए उनके इतने नखरे थे कि पग हो गए सब, तब हो सोचा इनको छोड़ो, और बहुत है सेवा करने के लिए, फिल बहुत है हमारे पास। तो वो बात तो मेरी प्राइवेट है, मैं 78 और 79 में सन्यासी और विद्वानों की सेवा करने हरिद्वार और ऋषिकेश गया, क्योंकि मुझे इनकी इनका जो ज्ञान है उसका बहुत अच्छा पता था, ज्ञान था मुझे। तो मैंने अच्छे डिबेट उनसे की और मैंने पाया ये लोग खाली हैं, कुछ नहीं इनके पास, साफ घटे हुए हैं उसका भी पता नहीं इनको। तो मैंने यहाँ दादी को मैंने यही बैठ कर 4-5 दिन अपने अनुभव सुनाए थे, डिबेट क्या क्या हुई मैं ये में भी लिखा था। तो शुरू हुआ कि नहीं इनकी सेवा की जाए। तो एक अनुभव सुना लेता हूँ, मैं बहुत सारे महामंडलेश्वरों से मिला था, मैं छोटा था तब, तो मुझे देख के वो सोचते थे ये बच्चा हमसे क्या बात करेगा ज्ञान की। तो एक स्वामी प्रकाशानंद तत्कालीन प्रसिद्ध महामंडलेश्वर सन्यासियों के बीच में बुजुर्ग, बहुत उसका नाम, तो उसको निमंत्रण दिया गया कि कभी आओ तुम उनका हुआ जाना। तो वो एक बार बॉम्बे से वापिस आ रहा था, तब ओम शांति भवन बन चुका था, और वो अपने शिष्य के सहित मधुबन में आया, बताया भाई मैं प्रकाशानंद हूँ, शिष्य नहीं ये जगत गुरु, और प्रेम बहन से मैंने परिचय करा दिया था, ये लोग वहाँ गए थे और उन्होंने इनको निमंत्रण दिया, वो आ गया। अब देखो वो शाम को आया 6 बजे, तो बहुत बुद्धिमान है ना, सुनो ये अनुभव। सवेरे वो रात को क्या हुआ किसी को पता नहीं, सवेरे मुरली चला रही दादी, वो बीच में आ गया, दादी ने उसको बैठाया। दादी कितनी बुद्धिमान थी और कितना वेल प्लान रखती थी सब चीजें वो आप सुनेंगे। तो उसको बुलाया कि आओ महाराज कुछ सुनाओ सबको। तो उसने सुनाया कि रात को जब आप सब सो गए तो मैं आपके इस आश्रम की गलियों में घूमा, उसने ये शब्द यूज किया गलियों में घूमा, और मैंने जो कुछ यहाँ देखा वर्णन किया उसने कि यहाँ जो शांति मैंने रात अनुभव की वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। ये अनुभव सुना के उसने दादी को कहा, दादी जी मैं जीवन भर आपको और बाबा को गाली देकर आया हूँ, चिंदी था वो भी, मैं गाली देता है, आज से मैं आपका भाई हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, और मेरे को यदि आप कभी 10 पैसे का पोस्ट कार्ड भी डाल देंगे, उन दिनों 10 डल जाएगा, मैं तुरंत चला आऊंगा। अब दादी बहुत होशियार, फटाफट लच्छू को इशारा दिया, राखी लाओ, राखी आ गई, माला आ गई, राखी बांधी भाई को, भाई बन गया, माला डाल दी और वो समर्पित। उसको कहा अपना ओपिनियन लिख दो, बाहर उसने अपनी ओपिनियन लिख दी। उससे कहा कि इसको अखबारों में दे दें, उसने कहा खुलेआम सारे भारत के अखबारों में इसे छपा दो। अगले दिन वो राजस्थान पत्रिका में छप गया। वो यहाँ से गया जयपुर, अब वो लंबा चौड़ा अनुभव था, मैंने यहाँ क्या देखा। अब जयपुर के उसके शिष्यों ने जो उसको घेराव कर लिया, क्यों गए ब्रह्मा कुमारी के पास, उसने सबको बंद कर दिया, एक सेकंड में सबके मुंह बंद कर दिए। बहुत बुद्धिमान विद्वान था ना महामंडलेश्वर, एकदम स्ट्रांग आदमी। वहां से शुरू हुई सन्यासियों की सुंदर सेवा। उसने जाके अपने दूसरे साथी को बताया, वो भी सिंधी महामंडलेश्वर था, फेमस नाम मुझे भूल रहा है, वो भी आया और उन दोनों ने मिलके फिर सभी महामंडलेश्वरों को तैयार किया। महामंडलेश्वर का सम्मेलन हुआ यहाँ, शंकराचार्य आए, बहुत सुंदर प्रोग्राम चला। उसमें मैं आपको एक चीज और सुनाऊं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, टाइम हो रहा है भाई, एक मिनट, डॉक्टर श्याम सुंदर दास महामंडलेश्वर बहुत पढ़ा लिखा, कई सब्जेक्ट में MA, वेदों का प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा कवि। उसने हमारी ओम शांति भवन की स्टेज पर माइक के सामने खड़ा होकर आधे घंटे में ये सिद्ध किया शास्त्रों के अनुसार यही प्रजापिता ब्रह्मा है। उसने शास्त्रों के कोटेशन देकर सुनाया था कि यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा ने आबू में तपस्या की थी। तो बहुत सुंदर शुरुआत वहां से हुई। जगदीश भाई ने फिर 1 घंटा भाषण किया और सब बातों को क्लियर किया। उनको भी शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, उन्होंने भी मंत्र गाए और सुनाए, सब सन्यासी महामंडलेश्वर चुप हो गए और मान्यता प्राप्त हुई। वहां से सब कुछ इजी हुआ है। तो दादी की ये दूरदर्शिता बहुत सुंदर थी, बहुत निरहंकारी थी दादी, बहुत अपनापन रखती थी, अहंकार बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये हमने बिल्कुल समीपता से उनको देखा। तो हमारी लड़की है जैसी महान आत्मा रही और अब भी महान कार्यों के लिए गई है, हम सबको इसकी बहुत गर्व है, खुशी है और